रात की क्लास चल रहा था, चौदह एक 1967 दूसरे पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी, शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कौन करते हैं? शिव बाबा, शिव बाप, शिव बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं या शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं? आधे कहते हैं शिव बाप करते हैं, अगर कहें शिव बाप करते हैं, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु है, उसकी आत्मा बिंदु का ही नाम शिव है, जो कभी बदलता ही नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो जो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, वो करता है, है? तो स्थापना कैसे करते हैं? जब करता ही नहीं है, अकर्ता है, तो स्थापना करने का सवाल पैदा होता है, है? नहीं। फिर स्वर्ग की स्थापना कौन करते हैं? हैं? शिव बाबा, शिव बाबा और शिव बाप में क्या अंतर है? बाबा है साकार, और कहा जाता है शिव बाबा, तो जरूर वो साकार निराकारी स्टेज में शिव समान रहता होगा, क्योंकि शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के तन से कि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को नंबर वार आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता हूँ। तो आत्मा रूपी बच्चों में कोई बच्चा तो ऐसा पावरफुल होगा जो पहले पहले बाप समान बनता हो, आत्माओं के बाप समान। आत्माओं के जिस बाप का कोई बाप नहीं होता, तो आत्मा रूपी बच्चों में शिव बाप का बड़ा बच्चा कौन? अरे बच्चों में कोई बड़ा बच्चा होता है या नहीं होता है? जो बड़ा बच्चा होता है, हिस्ट्री में देखा जाता है कि बड़े बच्चे को ही राजाओं ने अपनी राजाई सौंपी, क्योंकि बड़े बच्चे में सबसे जास्ती लंबे समय की सत्य की पावर होती है, सत्य जो सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की। सत्य माने सच्चाई, सत्य ज्ञान। इसलिए भगवान को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। लेकिन भगवान सत्य है, भारत में कहते भी हैं सत्य चित्त आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य और असत्य की पहचान कैसे होगी? साकार में कर्म करके दिखाएगा, वाचा बोल के दिखाएगा, सत्संकल्प की शक्ति दिखाएगा, तब सत्य होगा साबित। या बिना दिखाए साबित हो जाएगा? है सत्य का प्रूफ चाहिए, प्रूफ प्रैक्टिकल में चाहिए या सिर्फ कहने मात्र चाहिए? प्रैक्टिकल में चाहिए। तो शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के तन में, ब्रह्म महावाक्य बोलते हैं, वेद वाणी जो ब्रह्मा के मुख से निकलती है, कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ। क्या? तीनों काल का ज्ञाता तो हूँ। ज्ञाता माने जानकार, परंतु प्रैक्टिकल में जानकार नहीं हूँ। प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो नंबर वार। क्या? मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। मना, प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, और प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है, शरीर की इंद्रियों से होता है या बिना शरीर के प्रैक्टिकल होता है? शरीर से प्रैक्टिकल होता है, और उसको अपना शरीर है ही नहीं। तो शिव बाप कहते हैं जैसे मेरे को अपना प्रैक्टिकल शरीर नहीं है, निराकार आत्मा हूँ, जैसे सभी आत्माएं निराकारी होती हैं, लेकिन सदाकाल निराकारी नहीं रहती, और मैं है सदा शिव कहा जाता हूँ, सदाकाल निराकारी। तो मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ, जिस युग में आता हूँ, उस युग में आकर तुम बच्चों को नंबर वार आप समान बनाता हूँ। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाता हूँ, तो तुम बच्चे एक जैसे बनते हो या नंबरवार बनते हो? तो अव्वल नंबर जो बनता है संगम युग में, खास सदा काल के लिए निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। उस बच्चे का टाइटल है शिव बाबा। जो बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, बाप के बाप को। शिव बापा कहते हैं मेरा तो तुम आत्मा रूपी बच्चों के साथ एक ही संबंध है। कौन सा? बाप और बच्चे, बच्ची का भी नहीं। क्या संबंध है? मैं तुम्हारा बाप और तुम मेरे बच्चे। बच्ची कहे तो देह का संबंध हो गया। सम माने समान, बंध माने बंधन। समान बंधन हो तो कहेंगे संबंध। अब एक साकारी और एक निराकारी तो संबंध कैसे होगा? इसलिए तुम सब बच्चे निराकार आत्मा और मैं तुम निराकार आत्माओं का बाप हूँ, दूसरा कोई संबंध नहीं है। परंतु जब मैं इस साकार सृष्टि पर आता हूँ तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ, आदि से अंत तक संगम में वो मुकर्रर रथधारी ही इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसलिए वो ही एक आत्मा है जिसका नाम मेरे नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन है? क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। और किसी आत्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता। कितना भी बड़ा देवता देवात्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, धर्म पिता हो, धर्म आत्मा हो, कोई बड़े से बड़ा राक्षस हो, भूत प्रेत आत्मा हो, कोई का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ा जाता। और कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, ऐसे कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता। क्यों? परम पिता का मतलब ही है जिसका कोई पिता न हो, जो परे ते परे है सब पिताओं के मुकाबले। दुनिया में जितने भी पिता हैं उनके मुकाबले उस परम पिता के परे की स्टेज में कोई नहीं जा सकता। तो वो है परम पिता। परंतु पिताओं में तो उसको टैली किया जा सकता है, है? लेकिन आत्माओं में वो एक ही तुरीय आत्मा है जिसको किसी से टैली नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से और दूसरी आत्माओं में से कोई भी जन्म मरण के चक्र से न्यारा है ही नहीं। हाँ, एक आत्मा है पार्टधारी आत्माओं के बीच में, हीरो पार्टधारी। जो हीरो पार्टधारी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चारों सीन में, या संगम को मिला के कहो पांचों सीन में, ऑलराउंड पार्टधारी है, उसका पार्ट कभी खत्म होता ही नहीं। तो वो एक आत्मा आत्माओं के बीच में, पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में, शरीर के द्वारा पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी परमात्मा है। उससे परे का पार्ट बजाने वाली सच्ची रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि हीरो पार्टधारी को तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा शब्द परमपिता के बाद ही लगाया जाता है, और ये परंपरा आज तक भी भारत में चल रही है। कोई भी फर्म खोलेंगे, कोई भी नाम देंगे, तो बाप का नाम जरूर देंगे। बाप को आगे रखेंगे और खुद पीछे हो जाएंगे। जैसे इस दुनिया में सबसे ऊंचा साकार में जड़ रूप में पार्ट बजाने वाला सूर्य है, सबसे ऊंचा है या नीचा है? सबसे ऊंचा है। तो वो सूर्य जड़ है, सारी दुनिया को रोशनी देता है, परंतु चैतन्य रूप में भी कोई ऐसा सितारा है ज्ञान सूर्य के बच्चों में से, जो जो भी सितारे हैं, ज्ञान सितारे कहो, धरती के सितारे कहो, अच्छा उदाहरण के लिए आसमान के सितारे कहो, उन सितारों के बीच केंद्र बिंदु है। कौन सा सितारा? ध्रुव तारा। जैसे ध्रुव तारा अटल है, ध्रुव माना अटल, वो अपना स्थान कभी भी छोड़ता नहीं, ऐसे ही तुम धरती के सितारों के बीच, मनुष्य आत्माओं के बीच एक मनुष्य आत्मा ऐसी है जिसे हीरो पार्टधारी कहें, जिस हीरो पार्टधारी के आसपास सारे ही पार्टधारी चक्कर लगाते। क्या नाम बताया? अरे भक्ति मार्ग में भी उसका गायन है, अरे सितारों में भी उसका नाम है, जड़ सितारों में अभी तो नाम लिया, ध्रुव तारा। ध्रुव माने अटल है, क्या? अचल है, उसको कोई टाल नहीं सकता, चलायमान कर नहीं सकता। इस दुनिया में दूसरे दूसरे विधर्मी विदेशियों में से ढेर सारे महत्वाकांक्षी हुए जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश की और भारत में आए आक्रामक बनकर के विजय प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन भारत अटल रहा या चलायमान हो गया उन आक्रमणकारियों के आक्रमण से, विचलित हो करके हार खाली या हार खिला के भगा दिया। चाहे कोई अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कोई भी विश्व विजय का आकांक्षी क्यों न रहा हो, लेकिन इस भारत में आकर के सबको मात खानी पड़ी। चलायमान हो गए, सबकी बुद्धि विचलित हो गई। तो ये शक्ति है सत्य की। सत्य कभी हिलता नहीं है, अटल रहता है। झूठ के लिए कहा जाता है झूठ को पांव नहीं होते। जो झूठा होता है वो भागता है। इस भारत की धरनी में विदेशी आए, विधर्मी आए, वो झूठे धर्म के थे या सच्चे धर्म वाले थे, इसलिए हार खा के गए। हिस्ट्री ये बात बताती है। सत्य को कोई हार नहीं खिला सकता। तो जो सत्य है, बेहद में सत्य साईं बाबा है और प्रैक्टिकल में सत्य का पार्ट बजाने वाला है। 5000 वर्ष के षष्ठ चक्र में चारों युगों में सत्य का पार्ट बजाने वाला है। उस सच्चे पार्टधारी को कोई हिला ही नहीं सकता। इसीलिए गीता में कहा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस दुनिया में कभी भी सत्य का अभाव नहीं होता है। जैसे दुनिया में ढेर के ढेर विदेशी धर्मखंड हैं, विधर्मी धर्मखंड हैं, जैसे चीन जापान बौद्ध धर्मखंड, अमेरिका यूरोप क्रिश्चियन धर्मखंड, अरब देश अफ्रीका मुस्लिम धर्मखंड, ये सात धर्मखंड, इनकी हिस्ट्री कोई नहीं कह सकता कि 2500 साल से पुरानी हिस्ट्री है। माना इस दुनिया में ये अमेरिका यूरोप चीन जापान अरब देश अफ्रीका थे ही नहीं। समंदर के गर्त में समाये हुए थे। जैसे अमेरिका आज से 550 वर्ष पूर्व कोलंबस ने उसको खोज लिया, इससे पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था कि अमेरिका नाम का भी कोई महाद्वीप है। इसी तरह 350 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये धर्मखंड है, पृथ्वी पर दिखाई ही नहीं देते थे ही नहीं, समुद्र के अंतराल में समाये हुए थे, डूबे हुए थे। तो सच्चे खंड हुए या झूठ खंड है? झूठ खंड। और इन धर्म खंडों में अपने धर्म की स्थापना करने वाले भी धर्म के पिताएं कोई भी हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े ग्रेट फादर्स कहलाने वाले, वो सब झूठे। इसलिए हम धर्म खंडों में पालना लेने वाले उनके फॉलोअर्स भी सब झूठे या सच्चे? सब झूठे। यहां तक कि उन धर्म खंडों में, धर्मों में भारत की कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो 2500 वर्ष से इन विदेशियों विधर्मियों में कन्वर्ट होती रही, संघ के रंग में आती रही, वो सब झूठे या सच्चे? झूठे साबित होते हैं। सारी दुनिया जब झूठ बन जाती है यहां तक कि जो मनुष्य शक्ति का बाप है वो भी संघ के रंग में आते आते टोटल जड़त्वमयी बुद्धि वाला बन जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है, जिसकी यादगार भारतवर्ष में हिस्ट्री में स्वर्णलिंग के नाम से पूजी जाती थी, रजत लिंग के नाम से पूजी जाती थी, ताम्रलिंग के नाम से पूजी जाती थी। अभी सारी दुनिया में वो ही लिंग काहे का हो गया? पत्थर का लिंग हो गया, लोहे की तरह काला हो गया, सबसे जास्ती तामसी बन गया। ऐसा तामसी बन गया जैसे दुनिया के आखिरी मानवीय संप्रदाय जिन्हें रशियंस कहा जाता है, नास्तिक, किसी धर्म पर आस्था न रहने वाले वो इतने पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया को भस्मसात करने का बारूद तैयार कर लेते हैं, एटम बम। जैसे कोई मूर्ख मूढ़ बुद्धि जिस डाली पर बैठता है उसी डाली को काटने लग पड़ता है। उन मनुष्यों का भी तो कोई बाप होगा है? मनुष्य सृष्टि का बाप जो सर्वधर्मों में मान्यता प्राप्त है उसका गायन है। मुसलमान आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं। जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में उसे आदिदेव कहा जाता है। जिसकी सर्वधर्मों में मान्यता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम। एक ही मनुष्य है, मनुष्य आत्मा कहो या देवात्मा कहो या राक्षसों का राक्षस कहो, अच्छे से अच्छा कहो या बुरे से बुरा कहो, वो अच्छा पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माओं का भी बाप और बुरा पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माओं का भी बाप है। वो रशियन से एटमिक एनर्जी तैयार करने वाले तो इतने पत्थर बुद्धि हैं ही, परंतु इतने पत्थरीली बुद्धि होने के बावजूद भी उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी ही बनाई हुई रचना एटम बमों को विस्फोट कर सके, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार की थी उनका भयंकर दुष्प्रभाव आज तक भी हॉस्पिटलों में पड़े हुए मनुष्यों के द्वारा हाय हाय करते हुए देख रहे हैं। वो जानते हैं कहीं हमने ऐसी भूल कर दी, अब फिर से दोबारा एटमिक एनर्जी को विस्फोट करने की, क्योंकि अभी तो वह एटमिक एनर्जी इतना विस्तार का रूप ले चुकी है कि हजारों हजार वाट के एटम बम अनगिनत देशों में हैं, कोई देशों में प्रत्यक्ष भी हैं और कोई देशों में दबे छुपे भी हैं, कोई जानता भी नहीं। तो देखो दुनिया के ऐसा संगठन के आदेश के लोग जो नास्तिक रशियंस कहे जाते हैं, उन पत्थर बुद्धियों का भी बाप सौ % पत्थर बुद्धि बन करके इस सृष्टि पर ऐसा कार्य करता है जो कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, कोई भी देवात्मा नहीं कर सकी, कोई भी जघन्य राक्षसी आत्मा भी नहीं कर सकी। कौन सा कार्य? कोई पिता संसार का वो जघन्य कार्य नहीं कर सका। कौन सा कार्य है? हर बाप में इतनी भावना होती है क्या कि अपनी हुई रची हुई जो रचना है बच्चे, उन बच्चों की हत्या करने में दिल दहल उठता है। ये तीन संबंध दुनिया में ऐसे हैं, बाप, माता और गुरु। ये कभी भी अपनी रचना का पराभव नहीं दे सकते, क्योंकि सबके अंदर भावना होती है। और टोटल पत्थर होगा, उस पत्थर के अंदर भावना होती है, है? नहीं होती। तो इस मनुष्य शक्ति का बाप भावनाहीन धर्म संप्रदायों के बीच में आते आते, संघ के रंग में आते आते, सबसे जास्ती भावनाहीन पत्थर बुद्धि बन जाता है। और सारी दुनिया का विनाश करने के लिए निमित्त बन जाता है। इतना भयंकर पार्ट है। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के जो मुखिया हैं, राज्य चलाने वाले नेता भी कहो, वो बड़े बड़े पावरफुल राज्याधिकारी हैं। ऐसे ऐसे पावरफुल राज्याधिकारी हैं अमेरिका में। अमेरिका जैसे राष्ट्र के जिन्होंने ढेर के ढेर कंट्रीज, ढेर के ढेर देशों को, खासकर मुसलमानी राष्ट्रों को, इराक जैसे राष्ट्रों को राख बना दिया, जैसे उनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही न रहा। एकदम कमजोर लुंजुम पुंजुम बना दिया। और उनको सहयोग करने वाली बड़ी बड़ी राष्ट्र के और संस्था शक्तियां भी हैं। इन सभी राज्याधीशों से दुनिया के बड़े बड़े धर्माधीशों से टक्कर लेने वाली वो महाशक्ति है जिसे हिंदुओं में, सिखों में खास कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया के राष्ट्रों को खा जाएगा। राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को खा जाएगा, बड़े बड़े राज्याधिकारियों को खा जाएगा, धर्माधिकारियों को खा जाएगा, परंतु उसका बाल बांका करने की कोई में ताकत नहीं होगी। उसका नाम दिया है शिव बाप ने, शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। कभी भी लोप नहीं होता। जिसके लिए बोला कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, एक ही है, बाप, टीचर और सदगुरु, सुप्रीम बाप मनुष्य सृष्टि का, सुप्रीम टीचर मनुष्य सृष्टि का, और सदगुरु जो सिख लोग गाते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक ही सच्चा सदगुरु है। तो बाकी सब गुरु सात देहधारी धर्मगुरु झूठे साबित होते, कोई भी सदगति नहीं कर सकते। एक ही सदगुरु है साकार में, जो सारी दुनिया की सदगति करता है। जो दुनिया में भगवान को भी न मानने वाले टोटल नास्तिक हैं, उनकी भी गति सदगति करता है। उनके लिए बोला शिव बाबा के लिए कि वो तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, काय की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, स्वर्ग माने स्व माने आत्मा, ग माने गया, कहाँ गया, आत्मिक स्थिति में चला गया, तो वो स्वर्गवासी हो गया। पक्का पक्का स्वर्गवासी, 16 कला संपूर्ण, उससे भी ऊपर कलातीत हो गया, जो गाया जाता है भारतीय शास्त्रों में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, क्या कलाओं से परे चला जाता है, जो स्वयं कलातीत होता है वो ही कलातीत बनाए सकता है। युगायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो भगवान की 16,000 गोप गोपियां गाई जाती हैं, भगवान के साथ प्रैक्टिकल रूप में, शरीर से, शरीर की इंद्रियों के साथ गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं, कितने, 16,108 मनुष्यात्मा, जिनके संगठन की यादगार संगठन रूपी माला आज भी भारत के पुराने पुराने मंदिरों में देखी जा सकती है। ऐसा संगठन बना था दुनिया में, राजयोग सीखने वाले राजाओं का, जिन्होंने भगवान से राजयोग सीखा था, नंबर वार योगी बने थे, नंबर वार राजाएं बने थे। पढ़ाई का नाम क्या? राजयोग। जिस राजयोग की प्रक्रिया सीखने से वो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने, कंट्रोलिंग पावर धारण की। ये कंट्रोलिंग पावर दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये राजाई की पढ़ाई दुनिया का कोई भी धर्म पिता नहीं सिखा सकता, क्योंकि इस दुनिया में सब मनुष्य मात्र आधीन बनाने वाले हैं। क्या कोई भी स्वाधीन राजा बनाने वाला नहीं है? क्यों? क्योंकि वो स्वयं स्वाधीन नहीं बन पाते। स्व माने आत्मा। किसके अधीन नहीं बन पाते? आत्मा के अधीन नहीं बन पाते, पराधीन रहते हैं, कुछ न कुछ पराधीन रहते हैं। कहेंगे नंबर बार स्वाधीन बनते हैं, और जो बनते भी हैं नंबर बार स्वाधीन राजाएं बनते हैं, जो राजाएं कभी किसी के अधीन नहीं होते, प्रजा में होते हैं नहीं होते, वो राजयोग सीखने वाली भगवान के बच्चे, उनकी संख्या निर्धारित है। कितनी? 16,108। जो बोला ब्रह्मा के मुख से कि त्रेता के अंत तक 16,108 की संख्या पूरी होती है, सतयुग आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक जो 21 जन्म होते हैं, उन 21 जन्मों में कितने राजाएं प्रसिद्ध होते हैं? 16,108। कंट्रोलिंग पावर धारण करने वाले, कंट्रोलर। और ये भी बता दिया कि सतयुग त्रेता के 21 जन्मों में जैसी परंपरा चलती है, वही परंपरा कमोबीश द्वापर से कलयुग तक भी चलती रहती है। मना त्रेता के अंत में 16,108 तैयार होते हैं, माला बन जाती है, तो कलयुग के अंत में भी द्वापर और कलयुग दोनों युगों में जो भी राजाएं बनते हैं उनकी संख्या प्रत्यक्ष हो जाती है। कितनी? 16,108। ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर संगठित होकर के स्वर्ग स्थापन किया था। भगवान के महावाक्यों के आधार पर, भगवान की दी हुई श्रीमत के आधार पर, जिस श्रीमत का नाम भारत के सर्वोपरि शास्त्र, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है, माने भगवान ने ही वो ज्ञान का गीत गाया है। दुनिया में और किसी भी धर्म पिता ने ऐसा ज्ञान का गीत नहीं गाया। आज भी दुनिया में सब धर्म वाले गीता के ज्ञान की गुह्यता का लोहा मानते हैं कि जितना गीता में जितना गहरा ज्ञान है उतना गहरा ज्ञान हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं है। तो साबित होता है कि शिव बाबा ही ईश्वर की स्थापना करते हैं और वो ही शिव बाबा कहते हैं। क्या कौन कहते हैं? वो ही शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। मना शिव बापा नहीं कहते हैं मुझे याद करो है? आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु बाप नहीं कहते हैं, जो सदा ज्योति बिंदु रूप में स्थिर रहता है वो नहीं कहते हैं मुझे याद करो है? अरे वो क्यों नहीं कहते? मन मना भव मुझे याद करो, मेरे मन में समा जाओ। मेरे मन में लीन हो जाओ। आत्माओं का बाप शिव बाप क्यों नहीं कहते है? उनको मन है ही नहीं, वो तो सदा मन है, सदैव मन चैन में रहने वाला है। जिनको चंचल मन होता है उनका अमन चैन गायब हो जाता है। मनुष्यों को मन होता है इसलिए मननात मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन करने की जिसमें ताकत है उसे मनुष्य कहा जाता है। जानवरों में है ताकत है? नहीं है, तो उन्हें मनुष्य नहीं कह सकते। पक्षियों में भी कोई भी प्राणी में मनन चिंतन मंथन करने वाला मन नहीं है इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता। सर्वोपरि प्राणी, सर्वोपरि प्राणी मनुष्य ही कहा जाता है। और मनुष्य नाम क्यों पड़ा है? मनुष्यों में जो सर्वोपरि मनुष्य है जिसको शास्त्रों में मनु कहा है, मनन चिंतन करने वालों में श्रेष्ठ, उस मनु की औलाद को मनुष्य कहा गया। क्या मनु की औलाद मनुष्य कही जाती है? वो ही मनु जिसने भगवान बाप जब षष्ठ रूपी रंगमंच पर आते हैं 5000 वर्ष का ड्रामा का रिहर्सल कराने, शूटिंग कराने, रिकॉर्डिंग कराने आते हैं तो पर्दे के पीछे रहते हैं गुप्त या प्रत्यक्ष होकर पार्ट बजाते हैं? पर्दे के पीछे रहते हैं, प्रत्यक्ष होकर पार्ट नहीं बजाते। वो डायरेक्टर जो पर्दे के पीछे रहने वाला है सदा पर्दे के पीछे रहता है। कौन है? शिव बाप। शिव बाप को उनके असली नाम रूप के आधार पर कोई इन आंखों से देख ही नहीं सकता। इन आंखों से देख सकता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिले तब ही देख सकता है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है। कौन? शिव बाप ज्योतिबिंदु। निराकार आत्माओं का निराकारी अखूट भंडार वाला कौन सा भंडार? अखूट ज्ञान का भंडार धारण करने वाला, सदा धारण करने वाला। ऐसे नहीं आज भंडार है कल नष्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा अखूट भंडारी है जिसमें से सारा भंडार कोई निकाल ले तो भी संपूर्ण बचता है। ऐसा खूट भंडारी शिव बाप इस शक्ति रूपी रंगमंच पर आते हैं तो अपने ओरिजिनल नाम रूप में किसी को इन आंखों से देखने में नहीं आते। जैसे आत्मा किसी को नहीं देखने में आती, आत्मा निराकार तो बाप भी निराकार। वो निराकार बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं करता हूं है नहीं करता हूं, वो कुछ नहीं करता है, माने बोलता है या नहीं बोलता है? है वो आत्मा बोलती है या नहीं बोलती है? बोलती तो है लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ करती नहीं है। देखती तो है लेकिन जिन आंखों से देखती है वो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां नहीं है, इसलिए वो करता नहीं है, अकर्ता है। वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं तो जिसका तन लेते हैं, शरीर रूपी रथ लेते हैं, वो रथ जड़त्वमयी होता है, जड़त्वमयी कर्मेंद्रियों वाला है या जड़त्व रूप से अलग है? है रथ, मैं रथ लेता हूं, ये नहीं कहा तुम्हारी आत्मा पर अधिकार करता हूं, कहा है जिस रथ में आता हूं उसका नाम रखता हूं ब्रह्मा। क्या? अव्वल नंबर रथ में आता हूं तो अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है, और ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। चित्रों में ब्रह्मा के कितने मुख दिखाते हैं? चतुर्मुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं, पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं। तो मेरे मुख लेने की यादगार है ये ब्रह्मा के मुख। नंबर वार होंगे या सब नंबर वन होंगे? नंबर वार है। तो जो ब्रह्मा अव्वल नंबर वाला ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है, शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु, में उसे नमन करता हूँ, सबको नमन नहीं करता हूँ। गुरु के रूप में एक के सामने झुकना है कि सबको माथा टेकना है? एक के सामने झुकना है। इसलिए ब्रह्मा के मुख से ओरिजिनल रूप में निकली वेदवाणी में बोला ब्रह्म महावाक्य, जिसे हम मुरली कहते हैं, उसमें बोला क्या? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वही अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला बनेगा, या कोई दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर वाला बनेगा? है अव्वल नंबर। तो जो अव्वल नंबर है वही मुसलमानों में भी गाया जाता है, अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर क्या किया? अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। जो अलादीन की कथा मुसलमानों में बहुत प्रसिद्ध है, क्या? ठक्का करता था और परिवर्तन हो जाता था। बबूल के डंडे की बात नहीं है ठक्का करना, ज्ञान के डंडे की बात है कि ज्ञान का डंडे से ठक्का किया और कोई भी परिवर्तन हो जाता। जो बात अव्यक्त वाणी में बोली कि जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो जो इन आंखों से देखे अथवा जो इन कानों से दो शब्द भी सुने ज्ञान के, वो सदा काल के लिए इस जीवन में परिवर्तन हो जाए। ऐसे नहीं आज निश्चय बुद्धि बने ये मेरा सुप्रीम सोल बाप है और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाए, ऐसी यादगार है उस अल्लाह अव्वल दीन की मुसलमानों में, जिन इस्लामियों के लिए ब्रह्म महावाक्य में बोला
कि पहले पहले ये इस्लामी मरेंगे, शरीर से मरेंगे या देह अभिमान से मरेंगे? पहले देह अभिमान से मरेंगे। द्वापर युग से परम धाम से आने वाली इब्राहिम की फॉलोअर आत्माएं पहले पहले देह अभिमान से मरेंगी या उसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं पहले पहले देह अभिमान से मरेंगी? ज्यादा पुराने कौन है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर दो प्रकार के इस्लामी, एक डायरेक्ट परमधाम से उतरे हुए धर्म पिताओं के बाद आते हैं और दूसरी वो आत्माएं हैं जो परमधाम से नहीं आती। सतयुग त्रेता रूपी जन्नत से ही आती है और द्वैतवादी द्वापर युग में जो द्वैतवाद विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो कुल बनाते हैं, उन द्वैतवादियों के प्रभाव में आने वाले जो भारतवासी कन्वर्ट हो जाते हैं, उन कन्वर्टेड इस्लामियों की बात है। पुराने कौन है? ऊपर से आने वाली आत्माएं या जो पहले से पुनर्जन्म लेती हुई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो आत्माएं? तो वो ही आत्माएं जो कन्वर्ट हो जाती हैं और कन्वर्ट होकर के युगीता में कहा स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा लेकिन पर धर्म दूसरे का धर्म बहुत भयभीत करने वाला है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले जो कन्वर्ट करके ले जावेंगे अपने धर्म में, अपने धर्म खंड में, वो वहां ले जाकर के दास दासी बनाकर रखेंगे या तुम्हें राजा बनाएंगे? दास दासी बनाकर रखते हैं, आधीन बनाकर रखते हैं। जो तुलसीदास ने कहा रामायण में पराधीन सपने सुख नाए, क्या जो पराधीन हो जाता है उसको कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है? तो ऐसी कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं पहले देह अभिमान से मरेंगी, भगवान का ज्ञान लेकर के, या अपने धर्म के जो पक्के रहते हैं धर्म पिताओं के बाद उतरते हैं परमधाम से आत्मलोक से, वो पहले देह अभिमान से मरेंगे। हाँ, जो यहाँ कन्वर्ट हुए थे 2500 वर्ष में द्वैतवादी युगों में, वही आत्माएं जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं खास भारत में, तो पहले पहले जो कन्वर्ट होने वाले भारतवासी हैं वो समझेंगे भगवान की बात को, या जो कभी जीवन रहते कन्वर्ट नहीं हुए हिस्ट्री में वो पहले समझेंगे? है कन्वर्ट होने वाले पहले समझेंगे। जो दूसरे धर्मों विदर्भियों और विदेशियों के कभी संघ के रंग में ही नहीं आए कन्वर्ट होकर के, वो आत्माएं पहले समझेंगी, या जो विदेशियों और विदर्मियों के संघ में आकर के कन्वर्ट हो गए, जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होकर के रहे, उनके स्वभाव संस्कार को धारण कर लिया, वो पहले कन्वर्ट होंगे। दो प्रकार की आत्माएं हुई। षष्ठ रूपी जो वृक्ष है, उस षष्ठ रूपी वृक्ष में तीन प्रकार के मुख्य ट्यूब हैं। जो मुख्य तने से निकलते हैं, अब्बल नंबर वो हैं जो मुख्य तने में ही नीचे से ऊपर तक जाते हैं सीधे, न दाईं ओर के भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होते। भारतीय धर्म जैसे बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज आदि, और न बाईं ओर के वाम मार्गी गंदे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। जैसे इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, नास्तिक वगैरह, जो सीधे ट्यूब में ऊपर तक जाते हैं जन्म लेते लेते, वो है असल सूर्यवंशी, जो कभी भी किसी भी जन्म में 84 के चक्र में तो आते हैं लेकिन जीवन रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे महात्मा बुद्ध आया, उसने सिद्धार्थ में प्रवेश किया, उसकी आत्मा को कंट्रोल कर लिया सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाप ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया, लेकिन न बाप सिद्धार्थ का और न उसका ग्रैंडफादर बाबा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। जीवन रहते कन्वर्ट नहीं हुआ। वो ही सिद्धार्थ नाम वाली आत्मा जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाने लगी, चीन और जापान जैसे विदेशों में जाकर के बड़ी ख्याति पाई, सारे संसार में नाम बाला हो गया बौद्ध धर्म का। तो बताओ, सिद्धार्थ के माँ बाप का दिल अपने बच्चे के प्रति आकर्षित होगा या नहीं होगा? हैं? होता है, क्योंकि खून तो उन्हीं का है ना। इसलिए भले दिल आकर्षित होता है, मना खिंचता है बच्चे की बाहवाई के ऊपर, लेकिन फिर भी जो नियम है, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए, देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, मनुष्य जन्म का क्या कार्य है अपने धर्म के ऊपर आरूढ़ रहना, अपने धर्म के ऊपर टिके रहना। धर्म क्या है? स्व धर्म। क्या धर्म है? आत्मिक धर्म है। हमारा कोई दैहिक धर्म नहीं है। दैहिक धर्म ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले कम कुरियों वाले ब्राह्मणों का दैहिक धर्म है। जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ही कन्वर्टेड विधर्मी विदेशी आत्माएं भारत में जब भगवान आते हैं तो मां की गोद में आ जाते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां, जिससे बड़ी मां कोई होती ही नहीं। माँ का धर्म है। क्या धर्म है माँ का? बड़े से बड़ा सहनशीलता। दुनिया में आज भी सारी माताओं का ये धर्म देखा जा सकता है। वो तो नंबरवार माताएं हैं, परंतु जो अव्वल नंबर माता है, माता का पाठ बजाने वाली भारतीय आत्मा, वो कौन? ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा के बारे में ये प्रसिद्ध है कि आज तक कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी या कोई भी ब्रह्मा कुमार बनकर रहने वाला प्रजापिता ब्रह्मा कुमार एडवांस पार्टी का ही क्यों न हो, मुख से ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तुर्स आंखों से भी देखा, कठोर वचन बोला, वाचा के आधार पर भी दुख दिया, कर्मेंद्रियों के आधार पर थप्पड़ मारा। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कह नहीं सकता, कहता हुआ देखा नहीं गया। तो वो बड़ी से बड़ी मां साबित होती है संसार की या नहीं? काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं। तो उस आत्मा ने ये काम करके दिखाया, मां के रूप में बड़ा था, बड़ा काम करके दिखाया, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा। ब्रह्मा नामधारी तो बहुतों के नाम हैं, लेकिन ऐसा पाठधारी सहनशीलता का पाठ बजाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं हुआ, परम ब्रह्म भी नहीं। हाँ, परम ब्रह्म कहा जाता है तो ब्रह्मा नामधारियों में गहराई से देखा जाए जीवन चरित्र को तो ज्यादा से ज्यादा सहन करने वाला परम ब्रह्म होगा या सामान्य ब्रह्मा नामधारी होगा? कौन होना चाहिए? परम ब्रह्म होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर प्रकार का संस्कार, हर प्रकार का स्वभाव, परिवार में जितने भी भांति होते हैं, बाप से आता है। नहीं समझ में आया है? जिसे कहते हैं वंशानुक्रम, बाप से वंश शुरू होता है। तो सहन शक्ति भी अगर दादा लेखराज ब्रह्मा नामधारी में देखी जाती है तो ब्रह्मा में कहां से आई? क्योंकि मुरली में शिव बाप बोलते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई ब्रह्मा का भी बाप है या नहीं है? जिसने ब्रह्मा को भी, दादा लेखराज को भी एहसास कराया कि साक्षात्कार के आधार पर ये साबित होता है कि तुमको इस कलयुगी सृष्टि में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, जो तुम्हें सफेद पोषधारी का साक्षात्कार हुआ उसका ये अर्थ है। तो उस समय ब्राह्मणों के संगठन में और किसी को तो साक्षात्कार नहीं हुआ था, दादा लेखराज ब्रह्मा को ही साक्षात्कार हुआ था और उनके दिल में ये बात पक्की होके बैठ गई कि मैं ही माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली संसार की जो भी आत्माएं हैं, माता के चोले में, माता के स्वभाव संस्कार में, उनमें मैं हूं अब्बलंबर। लेकिन बाबा ने मुरली में प्रश्न कर दिया, ब्रह्मा का बाप कौन? तो इसे साबित होता है दादा लेखराज को भी जन्म देने वाला, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला ब्रह्मा के रूप में उस आत्मा को अपने पार्ट का एहसास कराने वाला कोई था या नहीं था? जो था वो ही बाप हुआ। और परिवार में चाहे माँ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो या कोई भी संबंधी हो, पूरे परिवार में जो बीज रूप संस्कार हैं, वो बाप से ही आते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं वंशानुक्रम से? आते हैं। तो ये साबित हुआ कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने दिखावे के आधार पर भले बड़े से बड़ा पार्ट बजाया सहनशीलता का, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हर धर्म में, चाहे विदेशी धर्म पिताएं हों, चाहे स्वदेशी धर्म पिताएं हों, बुद्ध आदि धर्म पिताओं ने जितना सहन किया है, धर्म के धक्के खाए हैं, उतना सहन और किसी ने नहीं किया। हिस्ट्री क्या कहती है? धर्म पिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं या नहीं खाने पड़ते हैं? हैं? खाने ही पड़ते हैं। इसलिए शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्य में, कि और सब जीवन कहानी भरतनाट्य पहनी है, बर्थ पाउंड जीवन कहानी किसकी है? हैं? अरे, और सारे ही जन्म और जयंतियां कौड़ी तुल्य हैं, और एक ही जयंती है जो बर्थ पाउंड है। कौन सी है? शिव बाबा की जयंती। क्यों? एक ही जीवन कहानी सर्वोपरि है। किसकी जीवन कहानी? शिव बाबा की जीवन कहानी। जरूर शिव बाबा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो आत्मा जन्म से ही, चाहे लौकिक जन्म हो चाहे अलौकिक जन्म हो, मनन चिंतन मंथन वाला जन्म हो, अलौकिक माने मनन चिंतन मंथन वाला सूक्ष्म शरीरधारी जन्म कहा जाए या पारलौकिक जन्म कहा जाए, पारलोक का मतलब है इस कलयुग की दुनिया से, विषय वैतरणी वाली दुनिया से पार, कौन सी दुनिया? स्वर्ग की दुनिया। उस स्वर्ग की दुनिया में या कहो स्वर्णिम संगम युग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म और कर्म, जिसके लिए गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ते, अर्थात जो मेरे जन्म कर्म को यथार्थ रूप में जानता है वो ही मेरे निकट पहुंच सकता है, अगर नहीं जानता है तो मेरे निकट नहीं पहुंच सकता। तो जन्म के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है, और वो कर्म क्या है? हैं? कर्म में सिर्फ सहन शक्ति ही विशेष होती है या सामना करने की शक्ति भी विशेष है? हैं? हाँ जी, सागर का ये विशेष गुण है क्या? लहरों के द्वारा सामना भी करता है तूफानों का, और दुनिया का जितना भी कचड़ा गंद ग्लानी है वो सब अपने अंदर समा लेता है। सागर से ज्यादा कचड़ा और किसी नदी में, पोखरे में, झरने में, झील में दिखाई देता है? हैं? सागर में अगाध कचरा भरा हुआ है और अगाध रतन भरे पड़े हैं। इसलिए गीत बनाई दिए हैं कि सागर में रतन भी हैं, सागर में कचरा भी है, खोज करने वालों को, अवगाहन करने वालों को क्या अवगाहन करना है? क्या चाहिए? रतन चाहिए या कचरा चाहिए? कचरे का अवगाहन करेंगे तो कचरा ही मिलेगा, और रतनों का अवगाहन करेंगे तो रतन ही मिलेंगे। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे। तो साबित हो गया
मनुष्य शक्ति में
एक ही मनुष्य आत्मा है, जिसके लिए मुरली में बोला है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? क्या है? स्वर्ग माने पुण्य आत्माओं की दुनिया, उस दुनिया पर भी मेरा आधिपत्य, और नरक माने पाप आत्माओं की दुनिया, उस पाप आत्माओं की दुनिया में भी मेरा ही आधिपत्य है। कौन है ये बात? कौन बोला? शिव बाप ने बोला है। हाँ शिव बाप तो कहते हैं ये ब्रह्मा नामधारी जो है ना, कोई भी ब्रह्मा हो इंटरफियर करके बोलता है। क्या ब्रह्मा नामधारी कोई भी ब्रह्मा हो क्या करता है? इंटरफियर करके बोलता है। तो वो इंटरफियर करके बोलता है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव बाप कहते हैं मैं नहीं बोल सकता मेरे मन में समा जा, क्योंकि मेरे मन में तो 5000 साल परम धाम में शांति से रहना लिखा हुआ है। क्या है मेरे मन में है? मैं 5000 साल शांति धाम में रहूं। सिर्फ वानप्रस्थ होकर नहीं, वानप्रस्थ के बाद क्या आता है? अरे वानप्रस्थ के बाद आता है संन्यास। सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। इस दुनिया का संपूर्ण त्याग कर देता है वानप्रस्थ। तब तक रहता है जब तक बच्चे को जो वारिसदार बना है, वारिसदार बना दिया, वानप्रस्थी होकर बच्चे को देखता है कि संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, तो बीच बीच में रास्ता भी बताता है वानप्रस्थी। लेकिन जब संन्यास ले लेता है तो कोई मतलब नहीं, अच्छा करे या बुरा करे। तो ये जो मनुष्य जीवन में भारतवर्ष में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिनमें वानप्रस्थी 3री अवस्था और संन्यास 4थी अवस्था बताई गई। इसकी परंपरा कहाँ से शुरू होती है? संगम युग युग है, परंतु कौन शुरू करता है? परंपरा को शुरू करने वाली आत्मा कौन है? जब राम वाली आत्मा। शिव बाप इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, देहधारियों के मुरीद बन जाते हैं। मेरे को कोई पूछता ही नहीं। अरे शिव बाप ने तो स्पष्ट बता दिया, गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। दुनिया में जो भी मनुष्य हैं कमोबेश आगे पीछे मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं, मेरे रास्ते पर ही चलते हैं। खास भारतवर्ष में, आम सारी दुनिया में, भारतवर्ष में ये जो परंपरा चली है 4 अवस्थाओं की, जिसमें वानप्रस्थी अवस्था और संन्यास, इनकी भी शूटिंग कौन करता है? रिहर्सल कहाँ से शुरू होती है? हैं? संगम में। और कौन सी आत्मा है जो पहले निमित्त बनती है? शिव बाप या राम बाप है? शिव बाप बनता है। जैसे दुनिया में जितने भी बाप हैं, अपना परिवार बढ़ाने के लिए पहली पहली रचना बनाते हैं माता की, बनाते हैं कि नहीं है? और उस माता को पहली पावरफुल रचना बनाने के लिए उसके ऊपर सारा घरबार सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं? है, सौंप देते हैं। पहली रचना है, पावरफुल होगी या कमजोर होगी? पावरफुल होती है। नहीं भी होती है तो पावरफुल बना देते हैं। जिसको आधार बनाते हैं परिवार रचने के लिए, उस पर फिदा हो जाते हैं। दुनिया के सारे बाप कोई न कोई पह अपनी जो माता बनाते हैं साथी, उस पर फिदा होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो जिस पर फिदा होते हैं वो हुई माशूका, और फिदा होने वाला आशिक हो गया। माना शिव बाप जब आते हैं इस सृष्टि में तो उनका टाइम हो जाता है, आशिक पना जताने का। आशिक हुए बगैर उनसे रहा नहीं जाता। मासूका को ढूंढ ही लेते और उसे तो कोई परेशानी नहीं ढूंढने में, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जानता है कि कौन से काल में कौन सी आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाती आई है। क्या किसी से झुक कर रहने वाली आत्मा नहीं रही कोई भी जन्म में? वो जानता है, तो उसी आत्मा के रथ को आधीन करता है। रथ को आधीन करता है या आत्मा को आधीन करता है? रथ को आधीन करता है। और रथ पांच तत्वों का, प्रकृति का पुतला होता है, जड़ तत्वों का। और जड़ पांच तत्वों का जो पुतला है, उन पांच तत्वों के संघात को प्रकृति कहते हैं। जो गीता में बताया है दो प्रकार की प्रकृति, जड़त्वमयी प्रकृति, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और चैतन्य आत्माएं भी हैं जड़त्वमयी बुद्धि वाली, पांच, जिन्हें पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता कहते हैं या नहीं? तो देवताएं हैं तो चैतन्य हैं या जड़ हैं? चैतन्य आत्मा है, वो ही परा प्रकृति। और उस परा प्रकृति का भी कोई बीज होगा या नहीं होगा? है, उस परा प्रकृति का जो बीज है, जो हमारे भारत में आज भी शिव के मंदिरों में पूजा जाता है, लेकिन कोई जानता नहीं है, बिना जाने मानते रहते हैं, उसकी हिस्ट्री को कोई नहीं जानता। शिव के मंदिर में जो लिंग पूजा जाता है, वो लिंग का सात्विक रूप द्वापर के आदि में, जब द्वापर युग सत्व प्रधान स्टेज से गुजर रहा था, तब सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना राजा विक्रमादित्य के द्वारा कराई गई थी। उस सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर था, लिंगाकार बड़ा रूप, और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। रोशनी की यादगार, जो हीरे में रोशनी, अंधकार में हीरा रख दो तो भी चमकता रहेगा या चमक गायब हो जाती है? चमकता रहता है। ऐसा हीरा जो इस संसार में, सारे संसार में कोई भी धर्म वाला हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला भी क्यों न हो, सब मनुष्य मात्र में घोर अज्ञान का अंधकार फैल जाता है। वो दुनियावी मनुष्य हो, पांच भूतों को मानने वाले, पंचभूत के शरीर को मानने वाले भौतिकवादी हो, या आध्यात्मवादी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, आध्यात्मवादी जो अपन को कहते हैं, वो सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। ऐसे घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं कि अपने बाप को ही भूल जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। भले कहे माया उनको अनिश्चय बुद्धि बनाती है, माया पांच तत्वों का संघात प्रकृति से हाथ मिलाती है और प्रकृति माया का सहयोग करती है। पंचभूतों की संघात रूप प्रकृति में पृथ्वी है मुख्य तत्व, जिसे कहा जाता है धरणी माता। क्या कहते हैं? धरणी माता। वो माया के प्रभाव में आकर के ऐसी तामसी बनती है, तामसी स्वभाव संस्कार ऐसा धारण करती है कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े भूडोल आते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हैं? भूकंप। जिन भूकंपों में दुनिया की बड़े से बड़ी जनसंख्या रही पड़ी है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रही पड़ी है, छोटी बिल्डिंगों में रही पड़ी है, ऐसे भयंकर भूकंप लाती है कि एक मंजिल के मकान भी धराशायी हो जाते हैं, तो उनमें दबकर कितनी मनुष्य शक्ति नष्ट होती होगी। थोड़ी या दुनिया की सबसे जास्ती विनाश की लीला भूकंप से होती है। वो पृथ्वी माता जिसे प्रकृति का रूप दिया गया, परा प्रकृति, माया के अधीन होकर ऐसा तांडव नृत्य करती है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है, किसका डांस? है? नहीं, शंकर तो पुरुष है। महाकाली का डांस, किसका डांस? महाकाली का डांस। महाकाली का धंधा ही है असुर संहारिणी। इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य मात्र रावण के राज्य में आ जाता है या कोई राम राज्य में रहता है अंत तक? राम राज्य में रहता है। अगर राम राज्य में रहेगा तो ज्ञान की रोशनी में रहेगा या ज्ञान अंधकार में आ जाएगा? बाप को पहचानने वाला होगा या बाप को न पहचानने वाला अज्ञानी बन जाएगा? है? तो महाशिवरात्रि कब का गायन है? है? हाँ, महाशिवरात्रि उसी समय का गायन है जब इस दुनिया की सभी भौतिकवादी और अपन को आध्यात्मवादी कहने वाले टोटल अंधकार में आ जाते हैं, अज्ञान अंधकार में, ना अपने पार्ट को जानते हैं निश्चय पूर्वक कि मुझ आत्मा का इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट क्या है जो शास्त्रों में गायन है। न अपने आप को जानते, पार्ट को जानते, न अपने बाप को जानते। जानते हुए भी अज्ञानी बन जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो उस समय की यादगार है महाशिवरात्रि। जिसकी जयंती गाई जाती है, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? तो कौन है वो साकार बनने वाली आत्मा जो साकार रूप में तो रहती है, शरीर के साथ रहती है, बड़ा रूप जो लिंग दिखाया जाता है उस रूप में यादगार भी बनी हुई है, लेकिन निराकारी स्टेज में स्थित हो जाती है? ऐसी निराकारी स्टेज जो बाप समान स्टेज कही जाती है, बाप नहीं बाप समान, जो भारत में परंपरा है, बड़े भाई को बाप समान मानते हैं, बाप तो नहीं मान लेते है? बाप मान लें तो साबित होगा इसी ने मेरे को पैदा किया, ये तो महापाप हो गया है। इसलिए इस्लाम धर्म में, खास मुसलमानों में ये कहावत है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, ये वही नूर है बाप समान, ये वही आत्मा की रोशनी है, सुप्रीम सोल बाप की रोशनी जो योग बल से प्राप्त होती है। ज्ञान का आधार लेकर जो बाप के अंदर अखूट ज्ञान का भंडार है, उस अखूट ज्ञान के भंडार का आधार लेकर वो योग शक्ति प्राप्त होती है, वो अब्बल नंबर का योगी बनता है, जो शास्त्रों में योगी ईश्वर गाया जाता है, योगी राज गाया जाता है भगवान के रूप में, या तो कृष्ण भगवान के रूप में योगी राज कहते हैं या तो शंकर के रूप में योगीश्वर कहते हैं, या तो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र मानसी पुत्र सनत कुमार को योगीश्वर कहते हैं। तो योगियों के ईश्वर एक होंगे या तीन तीन होंगे? एक ही है। जो योगियों का ईश्वर बनता है क्या योगीश्वर तब ही बनता है जब अखूट ज्ञान का जो सदा शिव भंडारी है उससे ज्ञान लेता है। क्या स्वयं ज्ञान का भंडारी है या किसी से लेता है? वो योगीश्वर लेता है तो वो ज्ञान का अखूट भंडारी बनता तो है सारी मनुष्य शक्ति के लिए, लेकिन सदा काल के लिए नहीं बनता। सिर्फ कहां बनता है? संगम युग में बनता है। इसलिए गीता में कहा है सांख्य योगौ पृथक वाला प्रवदन्ते ना पंडिता। जो विद्वान पंडित जन होते हैं वो सांख्य और योग को अलग अलग नहीं मानते। जो सांख्य है वो ही योग है। सांख्य का अर्थ है सह आख्या माने व्याख्या। जो व्याख्या के साथ जो बात विस्तार पूर्वक बताई जाए वो ही है सांख्य। ज्ञान जो गहराई से समझाया जा सके विस्तार पूर्वक, तब उसे ज्ञान कहा जाता है। जो स्वयं समझे और दूसरों को भी समझा सके वो सांख्य का प्रणेता शास्त्रों में एक ही प्रसिद्ध है, कपिल मुनि, सांख्य शास्त्र का प्रणेता, जिसने व्याख्या सहित ज्ञान की प्रत्येक बात को क्लियर किया। नहीं तो शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी सुनाते हैं उस वेद के महावाक्यों में वेद की ऋचाओं में व्याख्या नहीं है, उन ऋचाओं की व्याख्या है नहीं है। इसलिए आज दुनिया में कोई वेदों को नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, नहीं सुनाता, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता। जैसे ब्रह्मा के मुख से दादा लेखराज मुख से बोली हुई भगवान की वाणी को कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं समझता। समझता है? जिस ब्रह्मा की वाणी में स्वर्ग के रचयिता और स्वर्ग की रचना का पूरा पूरा आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। कौन है स्वर्ग का रचयिता? है शिव शंकर। अरे भक्ति मार्ग की बात करती, शिव शंकर कोई एक है क्या? शिव और शंकर की आत्माएं अलग अलग हैं या एक है? दो रचयिता हैं। ऐसा कहीं देखा कि परिवार रचने के लिए कोई बाप दो पत्नियों के साथ एक साथ पैदाइश करना शुरू कर दे? है वो देखा है? अरे ये कुत्ते कुतियों की दुनिया थोड़े ही भगवान पैदा करता है। भगवान आकर के स्वर्ग की दुनिया बनाता है या कुत्ते कुतियों की दुनिया पैदा करता है? हैं? कुत्ते कुतियों की दुनिया बनाने वाले तो देहधारी धर्म गुरु हैं, धर्म पिता हैं। जो अपन को देह समझते हैं, आत्मा नहीं समझते, आत्मा के स्वरूप को जल्दी स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होते। जब हम बच्चे जो सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं, वो आत्मा को भी स्वीकार करते हैं, आत्मा के स्वरूप को समझते हैं और आत्मा के बाप को भी स्वीकार ही नहीं करते। आत्मा का बाप जिस प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है, उस प्रैक्टिकल मुकर्रर रथ को भी पहचानते हैं। आज नहीं पूरा पहचानते हैं। सन 36 में पूरा, 37 में नहीं पहचान पाया। दादा लेखराज ब्रह्मा ने भी भल नहीं पहचान पाया। पहली ब्राह्मणों की सृष्टि रची ओम मंडली, नहीं पहचान पाया। वो सृष्टि पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची सन 47 में, जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा संगठन का, तो भी ब्रह्मा ने और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा के बाप को नहीं पहचाना। फिर ब्रह्मा के ही मुख से, दादा लेखराज के मुख से ही शिव बाप ने बता दिया, इशारा दे दिया कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, 66 में बताया, 10 वर्ष में माना 76 में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। ये तीसरा ब्राह्मणों का संगठन तैयार हुआ और तीसरा ब्राह्मणों का संगठन भी म्याद बता दी, जो 76 से आरंभ होता है, जिस 76 में पुराने ब्राह्मणों की दुनिया जो 47 में बनना शुरू हुई थी, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय 76 से उसका विघटन शुरू हो गया। एडवांस पार्टी का संगठन ब्राह्मणों का स्थापन होना शुरू हो गया, नई दुनिया बनी, लेकिन उसका भी टाइम बता दिया कि तुम बच्चों को जो बाप से डायरेक्ट सीखते हो, सन्मुख बैठ करके सुनते हो, किसे? बाप से, अम्मा से नहीं, ब्रह्मा से नहीं, किससे? बाप से डायरेक्ट बैठ करके सीखते हो, वो तुम बच्चों के लिए भी बता दिया कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 76 से लेकर 40 वर्ष पूरे होते हैं, 76 के बाद 77 मनाया गया संपूर्णता वर्ष, और 77 से लेकर 2017 तक हुआ 40 वर्ष का टाइम पूरा। तो फिर ब्राह्मणों का नया संगठन तैयार होता है और ब्राह्मणों का तीसरा संगठन का विघटन हो जाता है शुरू, जैसे 76 में शुरू हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन का मतलब क्या हुआ? 76 में बताया टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, मतलब क्या हुआ कि जो जीवन का मनुष्य का लक्ष्य दिया नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, वो अव्वल नंबर लक्ष्य पाने वाला डिक्लेयर हो गया 76 में। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग गया, अब कोई भी मनुष्य मात्र पुरुषार्थी के रूप में अव्वल नंबर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकता, टू लेट हो गए। इसके बाद 40 साल का जो टाइम दिया, जो 17 में पूरा होता है, क्या पूरा होता है? 17 है, क्या रहे? 17 ही रहेगा और झूठ खलास हो जाएगा। तो बताओ, जो कहते हैं सत्संग, जो कहते हैं सद्गुरु, एक सद्गुरु निराकार सच्चा, बाकी सब गुरु देहधारी झूठे। तो जिसे वास्तव में सत्संग कहा जाता है, वो इस सृष्टि में तीनों कालों में सत्य कौन है? कोई मनुष्य मात्र सत्य है या नहीं है? जो मनुष्य आत्मा सत्य है, वो 76 में ही डिक्लेयर हो गई। क्या नाम दिया? ना लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण। क्या? नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिस आत्मा का ज्ञान जल में ही घर है, संगम युग में भी ज्ञान जल में है और सतयुग त्रेता में भी ज्ञान के सार ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित रहता है, और द्वैतवादी द्वापर युग से कलयुग के अंत तक भी जो कहते हैं वेद व्यास, वेदों का नाम के साथ किसका नाम जुड़ा? व्यास के रूप में। फिर कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, उस भगवत गीता में भी नाम दिया हुआ है व्यास प्रसादात। किसकी प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला? व्यास की प्रसन्नता से। दाढ़ी मूंछ वाला था या क्लीन शेव देवता था या भगवान था? दाढ़ी मूंछ वाला मनुष्य था, मनुष्य के द्वारा लिखी हुई वो गीता है जो कागज के पत्तों पे लिखी हुई मिलती है। लेकिन वो गीता ज्ञान का प्रणेता मनुष्यों के बीच में सदा सत्य है या नहीं है? है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है, उसका कभी लोप, उस आत्मा के पार्ट का लोप ही नहीं होता। दुनिया की जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सारी मनुष्य आत्माएं महाविनाश के अंतकाल तक, जिसे कहते हैं महामृत्यु, साधारण मृत्यु तो होती ही रहती है इस दुनिया में, लेकिन अंतिम है महामृत्यु के टाइम पर सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं, कोई भी धर्म के हों, बाप को पहचानेंगे, मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसमें आत्माओं का बाप भी संगम युग में ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है, उस बाप को पहचानेंगे 500-700 करोड़ मनुष्य या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे तो गति सदगति मिलेगी, नहीं पहचानेंगे तो गति सदगति मिलने का सवाल ही नहीं। लेकिन भगवान का तो ये विरुद्ध है, क्या कि मैं जब आता हूँ तो सारी दुनिया की गति सदगति करता हूँ, क्या एक भी नहीं बचेगा जिसकी मुक्ति और जीवन मुक्ति न हो। तो जीवन में रहने वाला जीवन मुक्त कहा जाएगा या जीवन ही खत्म हो जाए, शरीर ही खत्म हो जाए तो जीवन मुक्त कहा जाएगा? हाँ, कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो भगवान जब आते हैं संगम में तो जितने भी पुरुष मात्र हैं मनुष्य वो आत्माएं, पुरुष माने आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ ही मानेंगे और उन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाले श्री श्री डबल श्री को भी पहचानेंगे, क्योंकि जो देवात्माएं हैं वो श्रेष्ठ हैं और देवात्माओं को भी बनाने वाला श्रेष्ठ ते भी श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ और भ्रष्ट कहा जाता है वो इस दुनिया की बात है या इस दुनिया से परे पारलोक की बात है? इस दुनिया में ही श्रेष्ठ, इस दुनिया में ही भ्रष्ट होते हैं। इसलिए गायन है श्याम सुंदर, क्या एक पार्ट ऐसा है भगवान का जो श्याम भी है, काला भी है, कलमुहा भी है, क्या काले कर्म करने वाला, काला मुंह वाला कहते हैं ना, जा जा निकल घर से बाहर, काला मुंह करके आ गई। तो वो काला भी है, काले कर्म करने वाला और गोरे से गोरा भी है, ऐसा श्याम सुंदर नहीं जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां बताती हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में इस जन्म में काला पतित और सतयुग में अगला जन्म लेगा तो गोरा पावन बनेगा। अरे श्याम सुंदर एक का नाम है या दो व्यक्तियों का नाम है? किसका नाम है? एक का नाम है ना। अब बताओ जिस श्याम सुंदर का गायन है कि इस दुनिया में भयंकर से भयंकर काला पार्ट बजाने वाला, क्या दुनिया में ऐसे लोग होते हैं ना काला कर्म करने वाले, क्या कहे जाते हैं? है गुंडे कहे जाते हैं। अरे काला कर्म करने वाले क्या कहे जाते हैं? गुंडे। काला कर्म करने वाले बड़े बड़े आतंकवादी कहे जाते हैं, उनसे सारी दुनिया डरती है या नहीं डरती है? हैं? डरती है। ऐसे भयंकर कर्म करने वाला महाकाल के रूप में गाया हुआ है और वही गोरे से गोरा पार्ट भी बजाता है। जब गोरा पार्ट बजाता है तो इतना गोरा है, इतना सुंदर है कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस पर इतने मोहित हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, क्या कि वो सारी दुनिया का माशूक कहा जाता है और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र आशिक बन जाते हैं। कैसे आशिक? मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। कौन किस में समा जाए? देह देह में समा जाए या बिंदु आत्मा बिंदु में समा जाए? है बिंदु आत्मा बिंदु, मेरी बिंदु आत्मा या 500-700 करोड़ की बिंदु बिंदु आत्माएं तेरी बिंदु रूप आत्मा में समा जाए, उसको कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है जहां समा जाऊं? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया है, क्या है उसके मन में? एक शिव बाबा, दूसरा ने कोई कोई कहेगा अरे बाबा क्यों कहा, बाबा तो साकार निराकार का मेल है। तो शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला है कि बाबा कहने से तेरी एक ही बुद्धि में आवेगा बिंदु, और कोई भी 500-700 करोड़ की बुद्धि में बाबा कहने से बिंदु याद ही नहीं आवेगा। ऐसा भी इस दुनिया में माहौल बन जावेगा कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस साकार में निराकार बिंदु को देखेंगे, जो गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना, उस लिंग रूप को ही कहा है, वो अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने मूर्त है या अमूर्त है? मूर्त तो है, लेकिन उसमें हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए, दिखाई देते हैं। चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया, क्या फर्स्ट क्लास चित्रकारी बनाई, क्या भाव भंगिमा बढ़ी हुई है उस शिवलिंग में, जो सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। ये भारतवासी ये क्या पूजा करते हैं, ये कौन है? न भारतवासियों को पता, न विदेशियों को पता, किसी को पता है ये लिंग क्या है, क्यों पूजा जाता है? अरे कहते हैं ये जलाधारी में रखा है, ज्ञान जल का धारण करने वाली है जलाधारी, माने पुरुष धारण करने वाला नहीं है। ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में पुरुष धारण करते हैं या सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं? हैं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बनते हैं। ये कन्याएं माताएं ही हैं भारत की, जो ज्ञान को धारण करती हैं प्रैक्टिकल जीवन में, और धारण करके राजधानी कही जाती है, राजा की धारणा शक्ति। क्या कही जाती है? राजा की धारणा शक्ति। क्या धारण करती है? ज्ञान जल को धारण करती है, जो अखूट ज्ञान जल भगवान बाप से आता है। वो भगवान बाप जो धनवान की तरह भगवान नहीं है, क्या जमींदार की तरह धनवान नहीं है? कैसा धनवान है? है? हाँ, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप है, इसलिए वो बाप निराकारी वर्षा ज्ञान का देता है या स्थूल वर्षा देता है? निराकारी वर्षा देता है। ज्ञान है निराकार, वो निराकारी वर्षा ज्ञान दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीज है, इसलिए गीता ने कहा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। कोई कहे ये क्या कह दिया, लक्ष्मी पवित्र नहीं होती है इस दुनिया में है? अरे लक्ष्मी इस दुनिया में जो भारत में प्रसिद्ध है, पार्वती का नाम, पार लगाने वाली पार्वती, जिसका विरुद्ध है वरुण शंभु न तो रहूं कुंवारी। क्या अगर मैं वर्ण करूं जन्म जन्मांतर तो एक का ही वर्ण करूं, किसी दूसरी आत्मा का वर्ण पति के रूप में न करूं, पति के रूप में वो गहरा संबंध न जोड़ूं, किसी भी मनुष्य आत्मा के साथ एक के सिवाय, तो वो लक्ष्मी पवित्र नहीं है पार्वती। अरे पार्वती पवित्र है या पवित्र है? पवित्र है। अब यहां तो गीता में लिखा हुआ है, खुल के देख लो श्लोक, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, है? माना कोई स्त्री पुरुष ज्ञान जल के समान पवित्र नहीं है, है? नहीं है। जब तक ईश्वर का ज्ञान जल धारण न करे मन बुद्धि में, तब तक वो संसार में पवित्र के रूप में पूज्य नहीं हो सकता। ज्ञान जल को धारण करेगा तो पूज्य बनेगा, ज्ञान जल को धारण नहीं करेगा तो पूज्य नहीं बनेगा। अब वो चाहे लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो, लेकिन नारायण का नाम ही है नारायण। नाम कब पड़ता है? काम ऐसा किया है जब से ईश्वरीय ज्ञान में जन्म लिया है तब से ही ऐसा काम किया है। कैसा काम? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा राजाई का हो और बच्चे का धंधा भीख मांगने का हो तो दुनिया में उसे प्रशंसनीय कहा जाएगा है? नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में समझ लो, क्या जो बाप के बच्चे होंगे वो भिखमंगे होंगे स्वभाव संस्कार से, या पुरुषार्थ करके कमाने वाले होंगे? पुरुषार्थ करके कमाने वाले होंगे। जिन रामकृष्ण की आत्माओं का इतना गायन है भारतवर्ष में, मनुष्य रूप में भगवान का जन्म लेकर के भगवान के रूप में गायन है, वो आत्माएं अपने पुरुषार्थ का खाने वाली होंगी या भीख मांगने वाली होंगी? अपने पुरुषार्थ का खाने वाली होंगी, भिखमंगी नहीं हो सकती। लेकिन ड्रामा, क्या ड्रामा? सीढ़ी के अंत में क्या ड्रामा दिखाया है? कौन भिखमंगा बन गया? भारत भिखमंगा बन गया। क्या कृष्ण वाली आत्मा भिखमंगे के रूप में नहीं दिखाई गई? कौन सी आत्मा दिखाई गई? राम वाली आत्मा भिखमंगे के रूप में भीख ले रही है विदेशियों से, सीढ़ी के चित्र में नीचे दिखाया गया। क्या जिसे शास्त्रों में भी बोला है क्या, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत आस होई। जो भरत नाम है वो राम से तीन जो छोटे भाई थे उनमें से बड़े भाई का नाम भरत है। कौन से धर्म का हुआ? इस्लाम धर्म का हुआ। वो इस्लाम धर्म वाली आत्मा विश्व का मालिक बनने वाली जो आत्मा है राम वाली, संगम युग में जब शिव बाप आते हैं बैगर भारत में, साधारण बैगर नहीं, फुल बैगर या छोटा मोटा बैगर, बैगर माने जिसके पास कुछ भी न हो, अपने पैसे भी न हो, घर बार भी न हो और पहनने योग्य कपड़े भी न हो, ऐसा फुल बेगर, ऐसे फुल बेगर को शिव बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो एक बार ही 5 ईयर प्लान बनाता हूं। क्या? एक बार ही 5 ईयर प्लान बनाता हूं। वो गवर्नमेंट तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट बार बार 5 ईयर प्लान बनाती है, है? और भारत संपन्न कभी बनता ही नहीं, और भगवान आकर के एक बार ही 5 ईयर प्लान बनाते हैं। 77 संपूर्णता वर्ष के बाद जैसे ही वो आत्मा संपूर्ण ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनती है, 78, 79, 80, 81, 82, 82 5 वर्ष के बाद फुल बैगर टू फुल प्रिंस बन जाती है। जो 5 वर्षों में बैगर के रूप में भगवान जिसे देखता है कि बैगर है, दुनिया भी देखती है, दरवाजे दरवाजे बैगर के रूप में घूमता था, वो सन 82 के बाद 83 में जो बोला, 83 में 13 होना चाहिए ना, किसका है 83 में 13 होना चाहिए ना, कोई आत्मा से बोला या नहीं बोला? कोई आत्मा है जो आत्मा भारतवर्ष में चित्रों में दिखाई जाती है, अन्नपूर्णा देवी के रूप में दिखाई जाती है कि नहीं है? जगत पिता भिक्षा पात्र लेके खड़ा है और अन्नपूर्णा उसे भिक्षा दे रही है। जो चाहो सो देती है, उसका दूसरा नाम कौन सी गाय गाई हुई है? कामधेनु गाय। जो गाय सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाली है, चाहे अच्छी कामना हो और चाहे बुरी कामना हो, उसका नाम अन्नपूर्णा भी दिखाया गया। उसका नाम है क्या दिखाया गया? कामधेनु गाय के रूप में भी दिखाया गया। दिखाते हैं कि कामधेनु गाय में उसके शरीर में सारे देवताएं निवास करते हैं। देखा कभी? नहीं देखा? देखा तो साबित होता है जितनी भी देवात्माएं बनने वाली आत्माएं हैं या होंगी सतयुग और त्रेता में, वो सब देवता बनने वाली आत्माएं कौन सी माता से जन्म लेती है? कौन सी चीज जन्म लेती है? जो अन्नपूर्णा कही जाती है, जो कामधेनु है, जो धरणी माता कही जाती है। क्या कही जाती? धरणी माता कही जाती है। जो धरणी माता धरणी से ही जन्म लेती है और धरणी में ही समा जाती है, सीता माता। तो देखो वो धरणी माता जो भीख देती है सब प्रकार की, तो सब प्रकार की प्राप्ति किससे होती है? दुनिया में बाप से, टीचर से, माता से या सदगुरु से? है? माता से सब प्रकार की प्राप्ति होती है। हायर क्लास की पढ़ाई माता पढ़ाएगी तो सब प्रकार की प्राप्ति कहाँ हुई? है? बाप से, बाप से सब प्रकार की प्राप्ति होती है। है? हाँ, सदगुरु से सदगति मिलती है, इससे बड़ी गति और कोई होती ही नहीं। तो देखो माता तुम्हारा क्या है? गुरु है पहले से पहला। माता को गुरु बनाए बगैर तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती, चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो, मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो। क्या अगर माता को गुरु नहीं बनाया तो सदगति नहीं हो सकती, स्वर्ग में पांव नहीं रख सकता, क्योंकि माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलती है। वो सूपनखाएं पूतना वाली माताओं की बात नहीं है जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं, हाव भाव दिखा करके। कौन सी माताओं की बात है? हैं? भारत माताओं की बात है। क्या नाम दिया? भारत माता। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली। किसकी माता? भारत की माता। तो अव्यक्त वाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो प्रत्यक्ष होती है जो भारत माता के हाथ में क्या दिखाते हैं? विजय का झंडा। जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला, किसका आवाहन करो? है? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला माने विजय पाने वालों का संगठन। क्या कैसे विजय होती है? पवित्रता से विजय होती है। आप पवित्रता से हार होती रहती है, पवित्रता ही विजय दिलाती है। जालंधर राक्षस का गायन है, उसकी मुट्ठी में पवित्रता की शक्ति जब तक रही, पवित्रता की देवी जब उसके पक्ष में जब तक रही, तब तक भगवान और उसका परिवार भी कोई उसका बाल बांका नहीं कर सका। और जब पवित्रता की देवी ने मुख मोड़ लिया तो जालंधर खेल खलास हो गया। दुनिया के सारे काम पवित्रता की शक्ति से होते हैं। जिस पवित्रता की शक्ति को सत्य कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति क्या हुई? है? पवित्रता। इसलिए बोला वो पवित्रता कैसे आती है? सत्य माने ज्ञान, सत्य माने सच्चाई, झूठ को ज्ञान या सत्य का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। वो सत्य से पवित्रता आती है। सच्चाई को धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली, उसको कहते हैं सार को धारण करने वाली। जिसने सत्य को धारण किया उसका गायन है भारत में सती। सुना कि नहीं है? नहीं सुना कानों से कभी? जो सती है उसकी भारत में बहुत मान्यता है, विदेशों में तो सती होती ही नहीं। सती कहाँ होती है? भारत में होती है। तो सत्य को धारण करने वाली है क्या? पुरुषों में सत्य होता है। सत्य माने सार। पुरुषों में क्या सार होता है? अरे पुरुषों में जो सत्य होता है उसके लिए ब्रह्मा मुख से बोला है मुरली में, ब्रह्म वाक्य है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। सुना कि नहीं सुना? मना क्या शक्ति है कुमारों में जो अधर कुमारों में नहीं रहती, अधर कुमारियों में नहीं रहती? क्या शक्ति है? है? अरे वो ही शुक्र है, शुक्राणु, ब्रह्मचर्य की पावर जिसे कहते हैं। तो वो सत्य है लेकिन वो इस साकार दुनिया का साकार सत्य है। शरीर है साकार और साकार देह का साकार सत्य है शुक्र वीर्य, जिसको जीवन में सच्चाई से धारण करने वाली नारी सती कही जाती है। अगर झूठी है, चोर है तो सती कहेंगे? हैं? सती नहीं कहेंगे। तो सती की इतनी शक्ति है, ये है देह का सत्य और वो है आत्मा का सत्य। आत्मा का सत्य क्या है? ज्ञान। आत्मा का सत्य ज्ञान, नहीं ज्ञान सद संपवित्रम यह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान सत्य, ज्ञान के समान सार, ज्ञान के समान शक्तिशाली चीज और दुनिया में कुछ भी नहीं। तो बताया कि शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं वो ही कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। माना क्या? मन मना बाबा माना क्या? अरे तेरे मन में क्या समाया हुआ है जो तुझे याद करूं? हैं? एक शिव बाबा दूसरा ना। ये शिव बाबा क्या? मुरली में क्या बोला शिव बाबा? क्या मुरली में बोला? साकार और निराकार का मेल। सिर्फ निराकार है तो शिव बाबा नहीं, निराकार ज्योति भी हो बिंदु भी हो और साकार शरीरधारी भी हो। तो महाविनाश काल में कौन है शख्सियत जो कभी भी किसी को शरीर से लुप्त होता हुआ नहीं दिखाई देगा? कोई है? हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसे लिंग रूप में दिखाया जाता है। वो लिंग रूप साकार जो जड़ तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जिनका संघात प्रकृति है, और प्रकृति भी परा प्रकृति माना चैतन्य रूप, और उस चैतन्य रूप प्रकृति का भी बीज कौन, चैतन्य रूपी प्रकृति का भी बीज कौन है, वो लिंग पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इनका जो संघात है संगठित रूप है वो जड़ है, और ये चैतन्य प्रकारा परा प्रकृति जो देवताओं के रूप में मानी जाती है अग्नि देवता वायु देवता जल देवता, उन देवताओं की भी संगठित शक्ति का सार माने बीज माने बाप वो हुआ लिंग। क्या हुआ लिंग, और उस लिंग में किसकी याद समा जाती है, है जो इस शक्ति का टोटल विनाश होता है तो भी वो आत्मा उस आत्मिक स्वरूप में स्थिर होकर रहती है निरंतर याद। अभी क्या होता है, है? बाप तो कहते हैं बच्चे अमृत वेले याद करो, बाप को याद करो, बैठते भी हैं कितनी देर याद रहता है, है? और कितनी देर दुनियादारी याद आती है, है? अरे बताते क्यों नहीं जल्दी जल्दी, है? अंश मात्र याद रहता है बाप, क्योंकि बाप के असली रूप को जाना ही नहीं, जाना नहीं जाना, इसलिए ब्रह्मा मुख से बोले हुए ब्रह्म वाक्य जिन्हें मुरली कहा जाता है उनमें बताया, क्या बताया है, मुरली में ये बात बताई है, क्या बात बताई है, है? छोटा रूप नहीं याद आता, बिंदु याद नहीं आता, निराकार आत्मा नहीं याद आती, तो क्या करो बड़े रूप को ही याद करो, वो बड़ा रूप भी विनाशी है या अविनाशी है, तो अविनाशी ही बनेंगे या विनाशी बनेंगे, बड़े रूप को भी याद करेंगे तो भी अविनाशी बनेंगे। फिर ये भी बता दिया कि बड़े रूप को याद करते करते छोटा रूप भी याद आने लगेगा, तो महामृत्यु के समय 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं देह की स्मृति को याद की स्मृति के प्रैक्टिस से छोड़े, दुनिया में विनाश होते हुए प्रैक्टिकल में देखेंगी टीवी में, आज इस शहर का विनाश हुआ, आज उस शहर का विनाश हुआ, आज दो शहरों का एटमिक एनर्जी से भस्मसात हुआ, देखेंगी निश्चय होगा या नहीं कि इस दुनिया से बुद्धियोग हट जाना चाहिए। भगवान से अर्जुन ने पूछा ये मन बड़ा चंचल है स्थिर नहीं होता, तो भगवान ने तरीका बताया अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य ग्रह्य थे, अभ्यास करो बार बार, बार बार भूल होती है, बार बार बिंदु विस्मृत होता है, दुनियादारी याद आती है। क्या याद आता है? इन आँखों से जो कुछ देखते हो है, जिसे तुम बहुत अच्छे से अच्छा समझते हो, जहाँ बहुत दिल चली जाती है, दिल जाती है तभी तो याद करते हो। तो इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो सब आज दिखाई देता है, कल ऐसा आने वाला है, ये सब खलास हो जाएगा। कोई कितना भी सहयोगी मित्र बता आचरण करने वाला अपने को दर्शाता है, दिखाता है कि हम तुम्हारे बड़े मित्र हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े हेजे हैं, वो सब धोखा दे जाएंगे, नहीं विश्वास बैठता है। विश्वास बैठता है ऐसा होगा? मुख से भले कह दें लेकिन फिर अमृत वेले याद में बैठेंगे तो कौन याद आएगा? इसे साबित होता है कि विराग पैदा नहीं हुआ है। राग माने प्यार और विराग माने विपरीत राग, विपरीत प्यार, बैराग। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सबसे बैराग आना चाहिए, तब क्या होगा? उनसे बुद्धि योग हट जाएगा। और कौन बुद्धि में बैठेगा? एक शिव बाबा दूसरा, अंत समय में शिव बाबा ही हमारी गति सदगति करेगा, वो ही हमारा सहयोगी बनेगा। उसकी याद किया और हमको क्या हुआ? सही रास्ता मिल गया, हमको सहयोग मिल गया। ऐसा अनुभव प्रैक्टिकल में करेंगे। जो अभी बोलते हैं क्या तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो, अपन को बिंदु रूप आत्मा समझकर मुझ बिंदु रूप बाप को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो साथ होने का अनुभव होता है? हाँ, कितनी देर, कितनी देर अनुभव होता है? ना के बराबर। इसका मतलब है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं बने। जब नष्टो मोहा बनेंगे, स्मृति लब्धा, एक शिव बाबा की स्मृति प्राप्त हो जाएगी निरंतर काल के लिए, तब क्या होगा? तब जब शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा हाजरा हुजूर, क्या मेरे को तुम याद करो और मैं हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन किस रूप में याद करो? साकार में, निराकार रूप में याद करो, प्रैक्टिकल रूप में याद करो। प्रैक्टिकल माने जो शरीर के साथ प्रैक्टिकल करके दिखा दे, ऐसे नहीं ज्योतिबिंदु फुदक 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 करके हमारे पास आ गया और हमने अनुभव कर लिया कि बाबा हमारे पास आ गया। ये प्रैक्टिकल अनुभूति है क्या? नहीं। तो बोला मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। कर्म नहीं विकर्म, जो विपरीत कर्म किए हैं मेरी श्रीमत के बरखिलाफ, वो पाप कर्म है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और तुम मालिक बन जाएंगे। क्या है? तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कहेंगे एक मालिक बनेगा कि सब मालिक बनेंगे? सब कैसे बन जाएंगे? तो बाप कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। वो एक ही समय है जब सारी सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम बन जाती है। सारी वसुधा पर रहे हुए सभी मनुष्य मात्र एक कुटुंब के सदस्य, आत्मा आत्मा, भाई भाई अनुभव करेंगे। हिंदू भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, ईसाई भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, एक बाप होगा तब अनुभव करेंगे। प्रैक्टिकल में होगा तब अनुभव करेंगे कि प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु बाप खुदक के यहाँ बैठ गया, स्मृति कर ली, बिंदी बाप आया और भ्रकुटी के मध्य में हमारी आत्मा के साथ बैठ गया। तो ये प्रैक्टिकल अनुभूति है, हेवनली गॉडफादर की अनुभूति है। अरे हेवनली गॉडफादर कहा ही तब कहा जाता है जब हेवन स्थापन करे, इसी सृष्टि पर हेवन स्थापन करके दिखा दे, नरक की दुनिया में स्वर्ग स्थापन करके दिखा दे। ऐसा स्वर्ग जिसके लिए बता दिया ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा मजबूत पक्का संगठन बनेगा कि इसमें एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। तो सब निर्विकारी होंगे संगठन में, या कोई विकारी भी होगा तो निर्विकारी को पक्का देवता ब्राह्मण कहा जाएगा या कच्चा ब्राह्मण कहा जाएगा? पक्का ब्राह्मण सो देवता। इसलिए भारतवर्ष में ब्राह्मणों की आज तक भी पूजा होती है, ब्राह्मणों को देवता समझ करके पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार? अभी वर्तमान ब्राह्मणों की यादगार कि भविष्य में ऐसे ब्राह्मणों का संगठन बनेगा, है? बनेगा। सारी दुनिया अनुभव करेगी क्या? जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। जीवन में रहते स्वर्ग का अनुभव करेगी, सुख का अनुभव करेगी, दुख का अनुभव नहीं करेगी। तुम मालिक बन जाएंगे, ये भी अच्छा है। समझा ना? तो आप ही पीछे उनको अच्छा लगेगा तो दूसरे को भी ऐसे कहेंगे क्या? जिनको खुद अनुभव होगा वो दूसरों को अनुभव सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे? ये भी तो मंत्र देते हैं ना। तो देखो तुम बच्चे भी महामंत्र देते हो, महामंत्र का अर्थ समझाते हो, मन मना भव का सही अर्थ क्या है, और दूसरे लोग भी मंत्र देते हैं। दूसरे लोग कौन? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले या दूसरे धर्म की मनुष्य आत्माएं भी मंत्र देती हैं। उनकी एम ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, मंत्र तो देते हैं लेकिन उस मंत्र की एम ऑब्जेक्ट नहीं है। और तुम्हारी? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? हमको नर से नारायण समान बनना है, नारी से लक्ष्मी समान बनना है। तुम्हारी तो एम बजा एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बनेगा। क्या मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बनेगा। अभी सन्यासी मंत्र देकर कुछ कहते कुछ भी नहीं है कि तुमको ये मिलेगा या क्या मिलेगा। कान में मंत्र फूंक देते हैं, कहते हैं किसी को बताना नहीं। कहते हैं ना उन सन्यासियों की शूटिंग कौन कर रहा है, कोई रिहर्सल कर रहा है या नहीं है? नहीं कर रहा है कौन है? कौन कर रहा है? कौन ब्राह्मण? ब्रह्मा कुमारियां कान में मंत्र फूंकती हैं। क्या? अरे भगवान नहीं आया हुआ है वहाँ, भगवान नहीं है, शैतान आया हुआ है। ये भी कान में फूंक के बताती हैं क्या शैतानी हो रही है वहाँ। अरे हम हैं सच्चे हिंदू, हिंसा को दूर करने वाले, काम विकार की हिंसा को हम ब्रह्मा कुमार कुमारी दूर करने वाले हैं। हम घर घाट छोड़ करके देखो पवित्र होकर के बैठे हैं। क्या वहां तो सब घर गृहस्थी में रहने वाले कैसे हैं? घर गृहस्थी के लोग सब इकट्ठे हुए हैं और जो भी कुमारियां भी सरेंडर हुई हैं वो कुमारियां भी गृहस्थी बन करके रह रही हैं। ये नहीं बताएंगे किसके साथ गृहस्थी है, हद की गृहस्थी है या उन कुमारियों की बेहद की गृहस्थी है, वो कुछ नहीं बताएंगे। तो देखो अभी सन्यासी मंत्र देकर कुछ कहते भी नहीं है कि तुमको ये मिलेगा या क्या मिलेगा। ये बात तो तुम समझाएंगे ना भाई, शिव बाबा को कहेंगे ये बाबा है ना, ये तुम्हारा घर भी है। क्या बाबा क्या है? तुम्हारा घर भी है। जब तुम आत्मा संपन्न ज्योति बिंदु बनेंगे तो कहाँ रहेंगे? परमधाम ऊपर, या परमधाम को तुम सृष्टि पर उतार लेंगे नीचे? उतारने वालों में कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? जो अव्वल नंबर होगा वो ही तुम्हारा बाप, वो ही लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव बाप तो कहते हैं न मैं पूजी बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। शिव बाप पूजी बनता है? है? पुजारी बनता है? नहीं, तुम बच्चे ही पूजी बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। नंबर बार तो अव्वल नंबर जो पूज्य बनता है वो लिंग के रूप में सारे भारत में पूजा जाता है और सारी दुनिया में जो भी खुदाइयां हुई हैं उन खुदाइयों में लिंग रूप ही सबसे जास्ती मिला है, लिंग मूर्तियां। मूर्ति कहो चित्र कहो, चित्र का ही की बात यादगार होती है, चरित्र ऐसा बजाया है तब तो सबसे जास्ती वो मूर्ति या चित्र मिलता है। क्या चरित्र बजाया है? कि साकार शरीर होते हुए भी शरीर की कर्मेंद्रियों का कोई भी कोई भान नहीं रहता, ये चरित्र बजा के दिखाया। इसलिए वो चित्र बनाया गया है। तो शिव बाबा को कहेंगे, क्या कहेंगे, वो हमारा घर भी है, जिस घर में आत्माओं का बाप शिव बाप रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। जिस घर में सभी मनुष्य आत्माएं मन मना भव की स्थिति धारण करके उस लिंग रूप में स्मृति में लीन होती हैं या नहीं लीन होती हैं? याद में लीन होती हैं या नहीं लीन होती हैं? मन मना भव, मेरे मन में जो ज्योति बिंदु है कहने वाला झाड़ के ऊपर बैठा हुआ, उस ज्योति बिंदु में सारी मनुष्य आत्माएं उस याद में समा जाती हैं या अलग अलग संकल्प करती हैं? है उसे एक ही ज्योति बिंदु की यादगार में 500-700 करोड़ को समा जाना है। कोई के अंदर एक भी संकल्प मात्र अलग नहीं रहेगा। अभी क्या है, हर ज्योति बिंदु मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं या एक ही संकल्प चलता है? सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। जो शंकराचार्य ने बोला, ये दुनिया, हम आत्माएं इस दुनिया में सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे, स्पाइसेस, छोटे बड़े बुदबुदे, हम आत्माएं क्या हैं? सागर के छोटे छोटे बलबूले हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सारे बलबूलों को इकट्ठा करो, पानी खारा होगा या मीठा होगा? खारा ही होगा। अब बताओ, जिस सागर के हम बुलबुले हैं, बुदबुदे हैं, जिसे हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, क्या वो परमात्मा सदा खारा ही है? है? नहीं, खारों के लिए खारा है और मीठों के लिए मीठा भी है। इसलिए दुनिया में भी देखो, उदाहरण देंगे तो कहेंगे नॉर्थ पोल पर जो बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ के, उन पहाड़ों से जो पानी सूर्य की गर्मी से बर्फ पानी बनती है ना, वो ढेर का ढेर पानी समुद्र में आकर के गिरता है तो वो नदी बन जाती है। खारी समुद्र के अंदर मीठे पानी की नदी, गल्फ स्ट्रीम धाराएं, लैब्राडोर का धाराएं, ये नाम दिए हुए हैं ना, समंदर के अंदर धाराएं बहती हैं नदी के रूप में। तो सागर मीठा भी है और सागर खारा भी है, मीठा कम और खारा ज्यादा। क्यों? क्यों दुनिया में मीठे स्वभाव संस्कार को धारण करने वाली पूरी 16 कला संपूर्ण और 16 कला संपूर्ण से भी परे की स्टेज में जाने वाली कैसा सुख भोगने वाली इंद्रियातीत, गोपियों से पूछो क्या है अति इंद्रिय सुख भोगने वाली ऐसी सुखमयी स्टेज, वो थोड़ी आत्माओं की होती है या ज्यादा की होती है? थोड़ी आत्माओं की होती है। वो थोड़ी आत्माएं जैसे दिखाई जाती हैं साकार समुद्र में मीठा पानी बहाने वाली, उनकी संख्या थोड़ी है, और खारा पानी सागर में ढेर सारा है। तो बताया, तुम ये बात समझाएंगे कि शिव बाबा को कहेंगे कि वो हमारा स्वर्ग भी है, सुखधाम भी है, शिव बाबा हमारा शांति धाम भी है, हमारी आत्मा का घर भी है। हम उस घर में समा जाएंगे, उसी घर से हम बाहर आएंगे और फिर सृष्टि रची जाएगी। क्या जो गीता में बोला है, अव्यक्त मूर्तिना, सारा जड़ संगम संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही निकलता है और अंत में उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है।